समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप जुड़ चुके हैं सरफिरोजी के साथ। आज देशभर में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। ये दिन बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक हैं। 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव की शुरुआत आज से हो रही है और हम आशा करते हैं कि भगवान गणेश आपको शक्ति दें और आपके जीवन में ढेर सारी मुस्कुराहटें बिखर जाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ही शुरुआत कर रही हैं परिक्रमा के इस अंक की, जिसमें मेरे साथ हैं रेनू।
Hello and good afternoon, Sir Firozi and dear listeners. You are tuned to Parikrama on 100.1 and I am Renu Katavia, as Sir Firozi has already told you. And today we have a selection of news, our discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes and much more in the next 30 minutes, Sir Firozi. And so let's begin with the news headlines.
Ji, bilkul.
Prime Minister Narendra Modi launches Jal Sanchay Jan Bhagidari initiative in Gujarat, says future generations will evaluate us on the basis of our attitude towards water.
केंद्र ने कहा एनडीआरएफ और भारतीय वायुसेना आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में बचाव और राहत कार्यों में जुटी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेलंगाना के खम्मम में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया।
Russian President Vladimir Putin says India, Brazil and China can serve as mediators in potential peace talks with Ukraine.
Jyoti Barwal ne Spain mein Under 20 Vishwa Kushti Championship mein swarn padak jeeta.
And at Paralympic Games in Paris, Indian players aiming for podium finish in athletics, canoe and powerlifting today. And dear listeners, it is now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national and global level. Or Sir Firozi, aaj hamare do topics kya hain? So they are TB treatment and vote. Dekho apna desh. So beginning with the TB treatment. Sir Firozi, are you aware that before the start of COVID-19 pandemic, TB or tuberculosis was the leading cause of death due to a single infectious agent, ranking well above HIV or AIDS. Almost 1/4 of the world's population is infected with them tuberculosis, but tuberculosis is curable and preventable. Ye shayad bahut kam logon ko pata hoga. Yes. So, what has the health ministry done hamare desh mein? The health ministry has approved the introduction of new, shorter and more efficacious treatment regimen for drug-resistance tuberculosis in the country. The ministry in a statement said that the introduction of the BPARM regimen under the National TB Elimination Program is highly effective and will have shorter treatment options, kyunki ye bahut hi ek lamba procedure hota hai isliye. And it has also added that this move is expected to significantly boost the country's progress to achieve its national goal of ending tuberculosis.
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत दवा प्रतिरोधी टीबी के लिए नई और छोटी अधिक प्रभावी उपचार पद्धति बीपीएएलएम को शुरू करने की मंजूरी दी है और इसका मकसद है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप सतत विकास लक्ष्यों के तहत इस बीमारी को 2025 तक वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले मुक्त करना। और रेनू, एमडीआर टीबी जो होती है इसका इलाज आमतौर पर 20 से 25 महीनों तक चलता है।
एग्जैक्टली
और इस इलाज के दौरान जो मरीज होते हैं उनके ऊपर कई तरह के नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। पर अब माना जा रहा है कि ये कदम देश से टीबी को खत्म करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि इलाज के वक्त में कमी आएगी और तेजी से मरीजों का इलाज हो पाएगा।
एग्जैक्टली
इस उपचार पद्धति में एक नई टीबी रोधी दवा फ्रीटोमैनिक शामिल है, जिसे बेडाक्वालीन और लाइनजोलिड के साथ मिलाया गया है। प्रिटोमैनिड को पहले ही भारत में उपयोग के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा लाइसेंस दिया जा चुका है।
एंड सर फिरोजी, ऑल्सो दिस मूव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली बूस्ट द कंट्रीज प्रोग्रेस टू अचीव इट्स नेशनल गोल ऑफ एंडिंग टीबी। A countrywide time bound rollout plan of the BPARM regimen is being prepared by the Central TB Division of Ministry of Health and Family Welfare in consultation with states or UTs, which includes rigorous capacity building of health professionals for safe administration of the new regimen.
और आकाशवाणी से विशेष बातचीत में नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने टीबी की इस नई दवाई के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
जी,
देश को टीबी मुक्त करना है, उसमें अब जो नई बात जुड़ गई है कि टीबी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को आम दवाइयों को जो काम नहीं करता टीबी उन व्यक्तियों के लिए अब एक नई दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन जो है वो सामने लाया गया है, क्योंकि हमारे टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम में उसको जोड़ देंगे। एक बिटाक्विलीन है दवाई, बी कैसे मान लीजिए उसका जो पहला शब्द है, फिर एक नई दवाई मिली प्रिटोमैनिड पी, और से तीसरी दवाई है लेनेजोलिड, ये पहले भी थी, और फिर चौथी दवाई है मॉक्सीफ्लोक्सासिन एम। तो इस दवाई के कॉम्बिनेशन को हम कह रहे हैं बी पाल एम, बिटाक्विलीन, प्रिटोमैनिड, लेनेजोलिड और मॉक्सीफ्लोक्सासिन। सो जो बी पाल एम जो कॉम्बिनेशन होगा, इससे हमें ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को खत्म करने के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए। पहले अब ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को ठीक करने के लिए 20 महीने लग जाते हैं, माने 2 साल लग जाते हैं, तब जाके हम उस पर काबू पा पाते हैं जो आजकल की दवाइयां हैं। अब पूरा जोर लगा के भी हम मेहनत करें, अब बी पाल एम कॉम्बिनेशन से, इन चार दवाइयों के कॉम्बिनेशन से ये काम 6 महीने में पूरा हो जाए, बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा। अब उन परिवारों का सोचिए, और लगभग ऐसे 75,000 ड्रग रेजिस्टेंट पेशेंट हमारे नॉलेज में हैं, अच्छा इससे भी ज्यादा हो। तो हमें ख्याल रखना है कि हमारी लड़ाई में, टीबी की लड़ाई में हम सब इकट्ठा हैं, एक नई दवाइयों का कॉम्बिनेशन अब सामने आ गया है।
एंड ऑन September 9th इन 2022 सर फिरोजी, आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू लॉन्च द प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान to urge citizens to work collectively towards TB elimination in spirit of Jan Bhagidari on a war footing. The President also launched the Nikshay Mitra initiative to ensure additional diagnostic, nutritional and vocational support to those on TB treatment and encourage elected representatives, corporates, NGOs and individuals to come forward as donors to help the patients complete their journey towards recovery. Such a good initiative. And moving on to our next topic for the day in our Dateline segment is Vote Dekho Apna Desh, which also clearly signifies Selfie Rosie, aapne apna desh kitna dekha hai?
मुझे कहना पड़ेगा कि हम बहुत ज्यादा अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं अपने देश को, देश में हमारी इतनी विविधता, डाइवर्सिटी जिसे कहते हैं।
एग्जैक्टली, यस। एंड सो इन आवर टुडेज क्योटिक वर्ल्ड, यू नो, हाउ मच डू वी एक्चुअली ट्रैवल दीज डेज। सो एंड वन थिंग, यू नो, आई ऑलवेज से व्हेनेवर वी आर प्लानिंग अ ट्रिप, वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर दैट व्हेन यू आर एम्बार्किंग ऑन अ ट्रिप और ऑन अ ट्रैवल, इट इज more than a journey, you're actually embarking on a path of self-discovery and transformation. So relating to the same, the voting for Dekho Apna Desh People's Choice 2024 is open until 15th of this month. What exactly is voting for Dekho Apna Desh? The aim of the nationwide poll is to engage with citizens to identify most preferred tourist attraction sites and understand tourist perceptions across 5 tourism categories, which are spiritual, cultural, heritage, nature, wildlife, adventure and others. The other categories will allow citizens to vote for their personal favorites, which will help in discovering unexplored tourist places in the country. I am for sure going to vote in this. Mm-hmm. The citizens can access the voting portal from the Ministry of Tourism's official website. This initiative was launched by Prime Minister Narendra Modi in March this year in Srinagar, and we have a little more from our correspondent on this.
Besides the four main categories, the others category is where people can vote for their personal favorite destination and help uncover hidden tourism gems in the form of unexplored tourism attractions and destinations including vibrant water villages, wellness tourism and wedding tourism. The outcomes will help determine the top tourist attractions of India, which will receive substantial support and investments from key stakeholders. Through this initiative, the government seeks to promote the preservation of cultural landmarks and traditions, ensuring their longevity for future generations. This will also help in understanding lesser known tourist locations that people would like to visit apart. Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi.
और रेनू, इस पहल की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसमें एक अदर की कैटेगरी भी रखी गई है वोटिंग के लिए, जिसमें आप वेलनेस टूरिज्म, वेडिंग टूरिज्म या कुजीन टूरिज्म जैसी जगहों का के लिए आप वोटिंग कर सकते हैं, जो अब तक बहुत ज्यादा फेमस नहीं है.
नहीं था
जी. और भारत को वैसे भी विविधताओं का देश कहा जाता है. यहां देखने के लिए इतना कुछ है और इस पहल से हम उन जगहों के बारे में पता लगा पाएंगे जिनके बारे में लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं.
एग्जैक्टली. एंड यू नो अनदर गुड थिंग इज दैट थ्रू दिस इनिशिएटिव द मिनिस्ट्री सीक्स टू प्रमोट द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल लैंडमार्क्स एंड ट्रेडिशंस एंश्योरिंग द longevity for future generations. This will also allow the ministry to understand lesser known tourist locations that people would like to visit apart from the better known popular attractions, because so many times it so happens ki mujhe bahut sare states ke bare mein, bahut achhi jagahon ke bare mein pata hota hai, par dusron ko nahi pata hota hai. So how do we let them know? So this is one dedicated portal wherein we can go and lekin is portal ka jo hum ek main hamari jo website hai wo hai innovateindia.mygov.in/dekhoapnadesh, wherein users can vote across categories. We have already spoken about them through their mobile number or email ID respectively.
इस पहल के शुभारंभ के साथ पर्यटन मंत्रालय विकसित भारत 2047 की दिशा में भारत की विकास यात्रा में मदद कर रहा है और विकास के लिए आकर्षक पर्यटन स्थलों की पहचान कर रहा है.
जी.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास है.
Yes, first we are going to talk about the festival of Ganesh Chaturthi, which is being celebrated today across the country with great devotion. The day marks the birth of Lord Ganesha, who is a symbol of wisdom, prosperity and good fortune. People place clay idols of Lord Ganesha in their home and worship them during the 10-day long festival. President Draupadi Murmu, Vice President Jagdeep Dhankar and Prime Minister Narendra Modi have greeted the people on this occasion.
महाराष्ट्र में विदर्भ के क्षेत्र में गणेश उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है. अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से.
जी. गणपतये
नमो नमः. श्री सिद्धि विनायक नमो नमः. अष्ट विनायक नमो नमः. गणपते बप्पा मोरया.
Vidarbha region of Maharashtra also has Ashtavinayak shrines of Lord Ganesha. Devotees have been present in large numbers for darshan at one of these Ashtavinayak Tekdi Ganesh temple in Nagpur since this morning on the occasion of Ganesh Chaturthi. The public Ganesh mandals of the city have worshipped the idols of Ganpati and have installed these idols in the pandals with decorations. These idols are taken through the main squares of the city with fanfare, for which the police have also made CCTV installation and other security arrangements. More than 400 immersion tanks have also been arranged for immersion of Ganpati idols by the Nagpur Municipal Corporation. To make this Ganesh festival eco-friendly as well as joyful, the Nagpur Municipal Corporation and the district administration are making efforts through installation of eco-friendly idols, production of compost from the waste collected during Ganpati immersion and portraying scenes at Ganesh mandals to promote social harmony during the festival. Since today and tomorrow are public holidays, people have flocked to the markets to buy idols. A unique form of the cultural splendor of Maharashtra can be seen in this Ganesh festival, which will continue for 10 days from today. Dhananjay Vankhede, Akashvani News, Nagpur.
गणपतये नमो नमः. श्री सिद्धि विनायक नमो नमः. अष्ट विनायक नमो नमः. गणपते बप्पा मोरया.
और रेनू, गणेश उत्सव को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए नागपुर में बच्चों ने गणेश मूर्ति बनाकर उसमें तुलसी के बीज डालने की पहल में भाग लिया. आइए जानते हैं इस विषय पर अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से.
जी.
नागपुर के प्रोफेसर राजेंद्र सिंह साइंस एक्सप्लोरेटरी द्वारा पर्यावरण अनुकूल मिट्टी के गणेश मूर्ति बनाने की कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में बच्चों को पर्यावरण का नुकसान किए बिना सही तरीके से गणेश मूर्ति बनाने और उसके विसर्जन की सही पद्धत सिखाई गई। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह साइंस एक्सप्लोरेटरी की मानद निदेशिका डॉक्टर सीमा उबाले ने इस पहल की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि
हाल ही में हमारे यहाँ पर्यावरण अनुकूल श्री गणेश मूर्ति निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में एक्सप्लोरेटरी के 30 बच्चे सम्मिलित हुए थे। इसमें बच्चों ने प्राकृतिक शाडू मिट्टी से श्री गणेश मूर्ति बनाई। बच्चों ने अत्यंत उत्साह के साथ बहुत सुंदर सुंदर गणेश मूर्तियां तैयार की। सौ राजेश्री बापट मैडम ने मूर्ति बनाने में बच्चों का मार्गदर्शन किया। मूर्ति के अंदर तुलसी के बीज डाले गए। यह मूर्ति पानी में विसर्जन कराने के पश्चात इसमें से तुलसी के पौधे उग सकते हैं। इस कार्यशाला के माध्यम से हमने विज्ञान में पर्यावरण संरक्षण और कला एकीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की है।
पर्यावरण के संवर्धन के साथ उत्सव मनाने की सीख अगर बच्चों को मिले तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हेमांगी कुलकर्णी।
And Sir Firozi, moving on to our defense capsule, let us now listen to the excerpts of the interview of the former Vice Chief of Air Staff, Air Marshal Anil Khosla, retired, who talks about the various aspects of the ongoing exercise Tarang Shakti in the defense news capsule from the Directorate of Public Relations, Ministry of Defense. And this interview has been taken by Broadcasting Officer Anand Saurabh.
भारत का अब तक का सबसे बड़ा मल्टीनेशनल एक्सरसाइज तरंग शक्ति का दूसरा फेज जोधपुर में चल रहा है। इससे पहले पहला फेज सुलूर में हुआ। तरंग शक्ति के बारे में जानने के लिए हमने बातचीत की पूर्व वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल अनिल खोसला से। आइए सुनते हैं इस साक्षात्कार के प्रमुख अंश।
सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, और सारे जो लिसनर्स को भी मेरी मेरी शुभकामनाएं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने चूज किया है, तो वार्तालाप शुरू करते हैं।
बिल्कुल सर, जैसा कि हम जानते हैं कि तरंग शक्ति बहुत ही व्यापक स्तर पे करीब 60 सालों के बाद भारत का ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हो रहा है, इसके पीछे क्या मुख्य उद्देश्य है और इस तरह के अभ्यास भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
जैसा कि आपने बताया कि ये 60 साल के बाद हो रहा है। जो 1962-63 में हुआ था उसका स्केल इतना बड़ा नहीं था। ये जो तरंग शक्ति इस बार हो रही है, ये इसका स्केल बहुत बड़ा है और स्कोप भी काफी बड़ा है। इसमें कई कंट्रीज पार्ट ले रही है। जो इन्विटेशन गया था 51 कंट्रीज को, उसमें से तकरीबन 30 कंट्रीज हिस्सा ले रही है, इधर उनके एसेट्स के साथ या फिर एज ऑब्जर्वर। तो काफी बड़ी एक्सरसाइज है ये इंडियन एयरफोर्स की, और नेचुरल प्रोग्रेशन है ये एक्सरसाइज का कि भारतीय वायुसेना जो है दूसरे देशों में और यहाँ भी होस्ट करती रही है बायलैटरल एक्सरसाइजेज दो नेशंस में, और मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेज में भी पार्टिसिपेट करती रही, पर पहली बार होस्ट कर रही है इतनी बड़ी एक्सरसाइज, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। नो, इसके कई ऑब्जेक्टिव्स और कई फायदे हैं इसके। एक तो ये स्ट्रेटेजिक रिलेशंस जो होता है फ्रेंडली कंट्रीज के साथ उसको बढ़ावा देता है, स्ट्रेंथन करता है। दूसरा क्या है, अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन जो है उनके साथ बढ़ जाती है, और ये जो फैक्टर्स है कोऑर्डिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप, बॉन्डिंग, ये सारे इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर कल को आपको किसी सिचुएशन में इकट्ठे भाग लेना हो, इकट्ठे काम करना हो, इकट्ठे ऑपरेशंस करने हो, तो वो इंटर ऑपरेबिलिटी बहुत जरूरी है जॉइंट ऑपरेशंस के लिए। दूसरा जो है, इस एक्सरसाइज में इतनी एयरफोर्सेज आएंगी और वर्ल्ड की लीडिंग एयरफोर्सेज हैं, तो उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेज है वो एक दूसरे से सीखने को मिलती है, नॉलेज एक्सचेंज होती है। इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सर ये है कि सिग्नल जो जा रहा है दुनिया को कि इंडिया की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है वो भी काफी बढ़ गई है, वो भी काफी दिखाई देगी इस एक्सरसाइज में। फिर प्रमोशन मिलेगा डिफेंस कोलैबोरेशन को। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो, एक तो म्यूचुअल ट्रस्ट जो है फ्रेंडली कंट्रीज के साथ वो बढ़ जाएगा, और दूसरा एक दूसरे से सीखने को बहुत मिलेगा। इसका ये महत्वपूर्ण है पूरी एक्सरसाइज का।
जी सर, बिल्कुल। अगर देखा जाए विश्व पटल पे अगर भारत का अभ्युदय, क्योंकि हम एक विकसित भारत बनने की आकांक्षा रखते हैं, दिशा में हम चल रहे हैं, तो उस दिशा में इसको कैसा कदम देखते हैं आप?
इसमें क्या है कि जो ये एक्सरसाइज है, जो डिफेंस डिप्लोमेसी उसका पार्ट है ये, जो एक्सरसाइजेज होती है, डिफेंस डिप्लोमेसी और देश की जो फॉरेन डिप्लोमेसी है दोनों मिलके काम करते हैं। और जो डिफेंस डिप्लोमेसी में काफी 16-17 डिफरेंट वर्टिकल्स आते हैं, उसमें म्यूचुअल जो एक्सरसाइज है बायलैटरल या मल्टीलैटरल बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और जैसा कि हमने बताया कि रिलेशनशिप में और पार्टनरशिप में एनहांसमेंट मिलता है, दूसरी चीज इसमें इन एक्सरसाइज में क्या होता है कि स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग जाती है कि आप इन इन देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हो, वो काफी सिग्नल जाता है आपके एडवर्सरीज को भी और वर्ल्ड को भी। इसमें अब आप देखिए इस एक्सरसाइज में क्या सिग्नल जा रहा है, बड़ा इम्पोर्टेंट कि जो इंडिया का पार वैल्यू, जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार है, जो पार है मिलिट्री पार भी जो है, उसमें क्या बढ़ाव आ रहा है, वो सिग्नल जा रहा है कि हाँ भाई इंडिया जो है अभी ग्रोइंग पार है। दूसरा है जो सिग्नल जा रहा है कि इंडिया की, हमारे देश की जो कमिटमेंट है रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी की तरफ कि हम कमिटेड हैं। और तीसरा सिग्नल ये जा रहा है कि इंडिया अभी एक रिलायबल पार्टनर बन सकता है ग्लोबल सिक्योरिटी और रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज के लिए। तो ये बहुत ही बहुत बड़ी चीज है और ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है इस एक्सरसाइज का।
ये बड़े एक्सरसाइज के लिए जो दो फेजेज में हुआ, सुदूर में हुआ और फिलहाल अभी जोधपुर में जो हो रहा है सेकंड फेज, तो इसके लिए कितनी जो प्रिपेयरनेस है कि क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है, किस लेवल तैयारी करनी पड़ती है, अगर उसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बता सकें।
मैंने कई एक्सरसाइजेस कोऑर्डिनेट की है, डायरेक्टर जनरल एयर ऑप्स 2 साल था, फिर वाइस चीफ था इंडिया में भी और अब्रॉड भी। तो ये जो है इसमें बहुत काम होता है, इसमें पूरा जो इंडियन एयरफोर्स है पूरा लग जाता है। और इस तरह की जो एक्सरसाइजेज इसमें की इतनी सारी कंट्रीज पार्ट कर रही हैं, एक साल से ज्यादा इसमें काम लग गया होगा और पूरा इंडियन एयरफोर्स इसमें लग जाता है। और इसमें कई पहलू देखने पड़ते हैं कि इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, और कई एजेंसी से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है भारत में भी और अब्रॉड भी। तो पहला तो आपको डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है कि हाँ भाई कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी, क्या क्या लेके आएंगी, कितना क्या पार्ट लेंगे एक्सरसाइज में। डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है कि हाँ भाई कितने लोग लेके आएंगे, क्या वेपन्स लेके आएंगे, क्या जहाज लेके आएंगे, वो सब। और फिर ऑफ प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑफ प्लानिंग में आपको ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, यू नो स्कोप कितना है, तो वो सारी चीजें उसमें टाइम लग जाता है और उसको बहुत सोच समझ के करना पड़ता है।
परिक्रमा के लिए जनसंपर्क निदेशालय रक्षा मंत्रालय से मैं आनंद सौरभ।
एंड नाउ वी विल टेक यू ऑन अ टूर ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड रिकॉल द इवेंट्स दैट हैपेंड ऑन दिस डे। India's glorious fight for freedom is one of the greatest struggles the modern world has ever witnessed. AIR News brings you a glimpse of the valiant struggle every day. Mahatma Gandhi participated in the second roundtable conference this day in the year 1931 in London.
To review the working of Government of India Act 1919. The Simon Commission was appointed in 1927. The report of the Simon Commission became the basis of discussions held in Britain to consider the future constitution of India.
These discussions were held in a series of meetings in 3 sessions and were known as the Round Table Conference. The first session, which started in November 1930, had 73 representatives from all Indian states and all parties except the Indian National Congress.
Indian National Congress was waging a civil disobedience movement against the colonial British government. The second session from September 1931 was attended by Gandhiji as the Congress representative. It failed to reach an agreement either on the constitution or on communal representation.
The third and the last session was held in November 1932. Was shorter and less important, with neither the Congress nor the British Labour Party attending.
It was the result of deliberations at the Round Table Conferences that the British government came up with the Government of India Act 1935, which established provincial autonomy in India.
And let's move on to sports. Selfirozi?
Ji. ज्योति बरवाल ने स्पेन के पोंटेवेद्रा में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 76 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ज्योति ने कल फाइनल में यूक्रेन की मारिया ओर्लिविच को हराया।
And in Paris Paralympics 2024, India have so far won a total of 27 medals, 6 gold, 9 silver and 12 bronze. Sprinter Simran will participate in the women's 200-meter T12 final. Dilip Gavit will take part in the men's 400-meter T47 final. And Navdeep in the men's javelin throw F41 final today.
और अब बात उस उन व्यक्तित्व की जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस. इस क्रम में सबसे पहले आज किसे याद करेंगे हम रिनू.
टुडे वी आर पेइंग ट्रिब्यूट्स टू जेनिफर केंडल कपूर हु वाज एन इंग्लिश एक्ट्रेस एंड फाउंडर ऑफ द पृथ्वी थिएटर. शी वाज नॉमिनेटेड फॉर द बाफ्टा अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल फॉर द फिल्म 36 चौरंगी लेन इन 1981. Her other film appearances included Bombay Talkie 1970, Junoon in 1978, Heat and Dust 1983 and Ghare Bhare 1984. Shashi Kapoor and Jennifer Kendall, we are talking about them because they were a couple. Shashi Kapoor and Kendall met for the first time in Calcutta in 1956, where he was a part of the Prithvi Theatre Company while she was playing Miranda in the play The Tempest as part of Shakespeareana. तो यहाँ पर क्यों ना हम एक प्यारा सा गाना सुन लेते हैं फ्रॉम द मूवी जुनून. इश्क ने तोड़ी सर पे कयामत.
बिल्कुल.
राज़े हकीकत क्या कहिए.
आज बाबू राम इशारा जी की जयंती है. ये प्रसिद्ध लेखक और फिल्म निर्देशक थे. इन्होंने हम दो हमारे दो चेतना चरित्र औरत जैसी फिल्में बनाई. आपको सुनाने जा रहे हैं उनकी निर्देशित एक फिल्म का ये गीत.
एंड मूविंग ऑन टू अनदर बर्थडे सर फिरोजी. आज हम याद कर रहे हैं नीरजा भानोट को. She was an Indian flight pursuer. On 5th September 1986, she saved a large number of passengers on board Pan Am Flight 73, which had been hijacked by four terrorists from the Abu Nidal organization after it made a stopover at Jinnah International Airport in Karachi, Pakistan. Around 17 hours into the standoff, after she opened an emergency exit door and began helping passengers escape from the plane, Neerja was shot and killed by the hijackers. And there was a movie also, Sir Firozi, Her Life and Humanitarian Actions, inspired the 2016 Indian Hindi language biographical film Neerja, directed by Ram Madhvani and starred actress Sonam Kapoor. So why don't we listen to this beautiful song and pay our tributes to Neerja Bhanot through the song Aisa Kyun Ma.
गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुँह पोछ देना, मैं ना सा लागे जहाँ. आँखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की. डाटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं मां सारी दुनिया तेरी तरह.
आज सुनील गंगोपाध्याय जी की भी जयंती है. ये प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार थे. ये प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार भी थे. नील गंगोपाध्याय के उपन्यासों पर फिल्में भी बनी. प्रख्यात बांग्ला फिल्मकार सत्यजीत रे ने इनके दो उपन्यासों पर फिल्म बनाई थी. आज ही जयंती है सुरेंद्र वर्मा जी की भी. इनका लिखा नाटक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक बहुत प्रसिद्ध हुआ था. इन्हें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे सम्मानों से नवाजा गया.
And today is the death anniversary of Keith John Moon, who was an English musician who was the drummer for the rock band The Who. Regarded as one of the greatest drummers in the history of rock music, he was noted for his unique style of playing. His playing ushered in an era wherein the drums became far more than simply a means of keeping the beat, and much of his recorded legacy has a timeless quality that has never been repeated. But here, let's listen into this song, Behind Blue Eyes.
No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man, behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded.
और श्रोताओं, अब इजाजत दीजिए कार्यक्रम परिक्रमा समाप्त करने की सरफी रोजी और रेणु कटारिया को।
नमस्कार।